भक्तगण, बहनों भाइयों, बालक बालिकाओं, समस्त शारदा माँ सेवा संघ के सदस्य भक्तगण, आज 27 जुलाई 2020 का शुभ दिन आपके लिए मंगलमय हो। जैसा कि आप प्रतिदिन श्री महाराज जी के विषय में उनके भक्तों के विचार, उनके भक्तों के संस्मरण, उनके भक्तों की स्वीट मेमोरीज सुनते जा रहे हैं। आपको अच्छा भी लग रहा है, जो आप भक्तों बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं कि हमें यहाँ बैठे श्री महाराज जी के बहुत से ऐसे प्रसंग मिल रहे हैं जिनसे हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। आज मैं ऐसे ही भक्त श्री जगदीश लाल सूद जी के, उनके जो अनुभव है श्री महाराज जी के साथ, जो उन्होंने क्षण बिताए हैं, उनके बारे में बोलती हूँ। श्री महादेव तीर्थ के अधिष्ठाता स्वामी संतदास जी महाराज की कृपा दृष्टि, श्री भगवत कृपा से श्री महाराज जी के दर्शन प्रथम बार मुझे वर्ष 1967 में तीर्थ में प्रतिष्ठित वैष्णो देवी माता मंदिर गुफा में हुए। मैं जोगिंदर नगर में रहता था, मेरा जन्म जोगिंदर नगर में हुआ। शिक्षा लेने के पश्चात मेरी नौकरी खादी कमीशन में लगी और मैं शिमला से बदल करके मेरे ट्रांसफर हुई और मैं कुल्लू आ गया। कुल्लू में श्री माँ के माता जी मेरी सभी बुआ थी, मैं उनके पास कुछ दिन रहा। फिर हमने वहाँ कुल्लू में ही एक मकान लिया और मेरे बड़े भाइयों प्रवासूल भी कुल्लू में ही खादी भंडार में सर्विस में लगे। तो हम कुल्लू में ही रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक जब मैं वैष्णो देवी मंदिर गया तो मुझे श्री महाराज जी के दर्शन हुए। मेरी रुचि संगीत में थी, आज भी है, तो जब श्री महाराज जी ने मुझे हारमोनियम बजाते देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भक्तों के साथ भगवान के नाम सिमरन में लग जाओ। और मैं मंदिर में स्विस में पर होने वाले श्री राम चरित मानस के अखंड पाठ, नाम संकीर्तन, वन्य धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगा। वर्ष 1974 में श्री महाराज जी ने कहा, जगदीश बाबा को गंगा सागर जाना है और आप 5 टिकट रिजर्वेशन करवा दो। लेकिन इसमें बहुत काम था, हमें 1 जनवरी को जाना था और महाराज जी ने मुझे शायद 25 दिसंबर को कहा। मैंने कहा, श्री महाराज जी अब तो रिजर्वेशन होना कठिन है। उनका जाओ जाओ शिमला जाओ, श्री माँ जी के बड़े भाई हैं बांटे और कुसुम ने कहा मेरे पिताजी भी हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो हो जाएगा काम। लेकिन जगदीश गए, जगदीश ने लिखा है कि मैं शिमला गया और वहां जाकर के मैंने बड़ा प्रयत्न किया। प्रसिद्धि ने कहा कि ये भी 2-10 दिनों में क्या रिजर्वेशन होगी, कालका हावड़ा एक्सप्रेस से जाना है कलकत्ता, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने श्री महाराज जी को कहा कि महाराज जी काम नहीं बना, तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, माता जी श्री माँ बाबा को, अपने माता जी को और जो तीसरी महिला थी उनको लेकर चंडीगढ़ पहुंच जाएगी और आप भी शिमला से चंडीगढ़ पहुंच जाओ। जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो मैं हैरान था, गीता बहन जी श्री माँ सूद धर्मशाला में इनको लिए बैठी थी और बेसब्री से मेरा इंतजार हो रहा था। जब मैंने आकर कहा महाराज जी कुछ नहीं बना, बहुत प्रयत्न किया, तो महाराज जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, सुबह चलो कालका चल पड़ेंगे। तो मैं सोच रहा था रिजर्वेशन ही नहीं और कल सायंकाल की गाड़ी है 11 बजे रात की, तो मैं कैसे इनको लेके वहां जाऊं। लेकिन महाराज जी की आज्ञा है वो तो उनके तो सत वचन है और जो कह देते हैं उनके वो संकल्प सिद्ध है। ये सोच कर मैंने कहा अच्छा स्वामी जी, सुबह हम जल्दी ही उठे, सबने अपना अपना बिस्तर बांधा संभाल लिया और हम चंडीगढ़ सेक्टर बस स्टैंड पर आ गए। वहां से छोटी छोटी बस कालका की ओर जा रही थी, छोटी छोटी बसें कालका की ओर जा रही थी। तो मैंने टिकट लिया और सामान लिखवाया छत पर और बहन जी ने दोनों माताओं को तथा स्वामी जी को लेकर बस में प्रवेश किया। मैं देखता रह गया और बस चल पड़ी। जब बहन जी ने रास्ते में देखा कि जगदीश है नहीं तो वो भी सोचने लगी अब क्या होगा। लेकिन खैर थोड़ी देर के बाद कालका दूर नहीं है तो हम ये लोग सब बहन जी श्री महाराज जी कालका पहुंच गए और मैं दूसरी बस के द्वारा कालका पहुंचा। तो श्री महाराज जी बड़े गंभीर रूप से मेरी ओर देखने लगे, कहने लगे जगदीश क्या बात है, अभी तो यात्रा आरम्भ ही नहीं हुई। जगदीश ने कहा महाराज जी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं कुली को पैसे देने लगा और एकदम से बस से चली गई। फिर हम बैठ गए प्रतीक्षालय में, स्वामी जी ने कहा यहीं बैठो और दिन का भोजन भी किया पर टिकट हाथ में नहीं है कैसे जाएंगे। 2 बजे श्री महाराज जी ने कहा माता जी मतलब गीतानंद जी को कहा मम्मी जी आप चाहो जगदीश को लेकर और टिकट घर में और जाकर टिकट ले आओ, 20 रुपये उसको दे देना। तो मैं भी हैरान था, बहन जी भी हैरान थे। हम पहुंचे टिकट घर में और हमने कहा कि हमें 5 स्लीपर चाहिए, 5 सीट चाहिए। तो वो देख के हम गई और देख कर हंसने लगा टिकट काटने वाला। तो उसने कहा अभी नहीं मिलेंगे, 11 बजे तो गाड़ी चले गई, रिजर्वेशन तो आपकी है नहीं। तो लेकिन दूसरे क्षण उसने कहा अच्छा ठीक है 5 स्लीपर 5 सीट आपको दे देता हूँ। और हम बड़े खुश होकर के महाराज जी के पास आ गए। महाराज जी ने कहा चलो ठीक हो गया। रात्रि हम 11 बजे बैठे और सुबह हम तीसरे दिन हम सुबह हावड़ा एक्सप्रेस के द्वारा हावड़ा रेलवे स्टेशन कलकत्ता पहुंच गए। वहाँ मैंने प्रबंध किया था गोल पार्क में खादी कमीशन का गेस्ट हाउस बना था, गेस्ट हाउस उसमें। तो इसलिए सोच रहा था अब इनको कैसे ले जाऊं, 5 व्यक्ति हैं और सामान बहुत ज्यादा है, टैक्सी में आएगा नहीं। तो 2 टैक्सी करके हम वहां पहुंचे और वहां ये यात्रा काफी लंबी है 10-12 दिनों की, जिसमें मैंने महाराज जी के बहुत से ऐसे रूप देखे, अनेकों रूप देखे, कभी बालवत कभी एक महान विराट के रूप में और कभी संत के रूप में, इस तरह अनेकों रूप देखे। और कभी कभी मैंने उनको उन्मत्त रूप में भी देखा, वो किस तरह उन्मत्त होते भी चलते थे। तो इस यात्रा में महाराज जी ने हमें दक्षिणेश्वर बेलूर मठ जहाज कोठी और रामकृष्ण मिशन फॉर कल्चर आदि बड़े प्रसिद्ध स्थान कलकत्ता के दिखाए और स्वामी विवेकानंद जयंती 14 जनवरी को वो हमें बेलूर मठ ले गए थे। वहाँ भी हमने विवेकानंद जयंती का एक दिव्य दृश्य देखा था। फिर महाराज जी हमें गंगा सागर ले गए थे। गंगा सागर का भी कुछ वर्णन करना कठिन सा लग रहा है लेकिन वो वर्णन कभी भुलाए नहीं भूलता। तत्पश्चात हम जगन्नाथपुरी गए, वहाँ महाराज जी का विराट रूप देखने को मिला। जबकि पुजारियों ने कहा मंदिर बंद हो चुका है अभी दर्शन नहीं होंगे, तो महाराज जी ने कहा अच्छा, लेकिन एक छोटे छोटे 3 छिद्र दिखाई दिए। तो महाराज जी ने वहां से देखा तो कहा देखो जगदीश अंदर तो भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, तो हमें कहते दर्शन नहीं होंगे। तो महाराज जी को विराट रूप आ गया, उन्होंने लाठी हाथ में थी उनके और उन्होंने पुजारी को कहा क्या बात है, ये मंदिर है भगवान का मंदिर है, यहाँ भी सच झूठ चलता है, वो तो देखो भीतर लोग और हमें आपने इनकार कर दिया। तो पुजारी समझे उनको ये भिखारी नहीं, ये तो कोई महापुरुष है और उन्होंने झट से हाथ जोड़े और महाराज जी को हम सबको भीतर ले गए और दर्शन करवाया। इस तरह से एक नहीं अनेकों रूप देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। फिर बहन जी ने नौकरी छोड़ी, घर छोड़ा और मंदिर ही आ गई उसमें 1976 में गंभीर रूप से बीमार हो गया और मुझे जीवन की आशा लगभग समाप्त हुई सी लग रही थी। उसमें श्री महाराज जी मुझे मंदिर से कुल्लू लाए और स्वयं अपने हाथों से सेवा की। बहन जी ने भी उसमें मेरा अपार सहयोग दिया और मेरी जीवन नैया फिर से चल पड़ी और आज तक चल रही है। श्री महाराज जी मानव को धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते थे। एक बार उन्होंने बताया कि धर्म की जड़ सदा हरी रहती है, वे फलती है, फूलती है। इस संबंध में उन्होंने हिमाचल के नगर बिलासपुर का उदाहरण दिया। बाघड़ा बांध के कारण गोविंद सागर बन गया व पुराना बिलासपुर शहर डूब गया व नया शहर बसाया गया, परंतु पुराने शहर में वर्षों से प्रतिष्ठित भगवान के मंदिर नहीं डूबे। वे अब भी जब भी सागर का जल कम होता है तो मंदिरों के शिखर जल से बाहर दिखते हैं। श्री महाराज जी कहते थे कि भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता, नामे भक्ता पुनश्यति। भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं नामे भक्ता, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए था भक्त को अपना कर्म करते हो ईश्वर की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। तो मुझे एक और दूसरी यात्रा करने का सौभाग्य श्री महाराज जी के साथ 1983 में मिला। कुल्लू से कन्याकुमारी की यात्रा भी मैंने उनके साथ अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ की थी। उसमें भी महाराज जी के अनेकों देखे, देश के प्रति प्रेम देखा, देश के लोगों के प्रति सेवा भाव देखा और बहुत कुछ जीवन में पाया, बहुत कुछ पाया जो कि आज भी मेरी मन की पोटली में बंधा हुआ है। जब कभी मुझे दर्शन करने होते हैं तो मैं पोटली खोल कर दर्शन कर लेता हूँ। श्री महाराज जी दृढ़ संकल्प पर अधिक जोर देते थे। एक समय एक भक्त के वृद्ध माता पिता को हरिद्वार में गंगा स्नान करने का वचन दिया था। यात्रा पर चल पड़े परंतु मंदिर पहुंचने पर कार खराब हो गई। वह उन दिनों मम्मत आदि का कार्य इतना विकसित नहीं था, अतः दो दिन वहीं व्यतीत हो गए। ये वार्ता रास्ते के मध्य हुई थी। ये बात वहाँ ये घटना वहाँ घटी थी। भक्त ने निरुत्साहित होकर कह दिया कि बाबा जी यही ब्यास नदी में स्नान कर टूट जाते हैं। कहा क्या कहा? बाबा जी स्वामी जी हम ऐसा करते हैं कि ब्यास नदी में स्नान करते हो घर अपने अपने घर चले जाते हो। परंतु स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने नाराज होकर आवेश में कहा कि इससे अच्छा है ये सब अपने अपने प्राण छोड़ दे, जो संकल्प लिया है उसे पूरा किए बिना बाबा नहीं जाएगा। तभी चमत्कारिक ढंग से सब प्रबंध हो गया, बा हरिद्वार को प्रस्थान किया और संकल्प पूरा हुआ। तो श्री महाराज जी के वचन सर वचन जो वो कह देते थे वो पूरा अवश्य होते थे। 1987 में उन्होंने जीवित समाधि ले ली और हम सब भक्तों को कहा कि बाबा अब चला जाएगा तो मंदिर का ध्यान रखना, बाबा जाएगा केवल सोए जाएगा, आत्मा नहीं रहेगी, आपको मंदिर में आना है, खड़े रहना है, देखभाल करनी है। और इस तरह से वो कई प्रकार से हमें समझाते थे कि बाबा के बाद मंदिर का ध्यान कैसे रखना है और कई बार हमें गले लगा करके रोकते भी थे, आंसू भी बहाते थे कि अब मिलना नहीं होगा। एक बार उन्होंने कहा कि हम पीछे भी इकट्ठे थे, पिछले जन्म में भी हम कहीं इकट्ठे थे, अब भी इकट्ठे हैं, अगले जन्म में फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। उनकी ऐसी अलौकिक बातें, अलौकिक जो वार्ता थी उसको सुनकर मैं बहुत ही हैरान हुआ करता था कि स्वामी जी को सब पता है, अंतर्यामी है, जिनको सब जन्मों का भी पता है, हमारे जन्मों का भी पता है, अपने आप का तो उनको पता है ही है। इस तरह से मैं उन्हीं के विषय में आज भी सोचता हूँ और अनुभव करता हूँ और साथ ही बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि कितना मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं श्री महाराज जी का भक्त बन गया और मैंने कुल्लू में घूमते में जगह ले ली और यही घर बनाया ताकि मैं बार बार श्री महाराज जी के दर्शन करूँ, उनके पश्चात मंदिर में जो ऐसे उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी, बार बार जाऊं, हर फंक्शन में हर उत्सव में भाग लूं और जितने हो सके संघ का सहयोग दो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जगदीश सूद अपनी वार्ता को समाप्त करता हूं। अगला मैं आपको आज बताऊंगी शकुंतला सूद जी का, श्रीमती शकुंतला सूद धर्मपत्नी और श्री लेट श्री अमदल सूद, उन्होंने दो चार लाइनें अपने अनुभव लिखे हैं, जबकि रामलाल सूद जी ने तो पूरी किताब ही लिख दी है जिसको मैं बाद में पढ़ के सुनाऊंगी कभी। तो शकुंतला जी लिखती हैं, मैं शकुंतला सूद धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रामलाल सूद वरिष्ठ संघ सदस्य एवं श्री महाराज जी के अंतरंग भक्त शायद वाणी के 50वें अंक को अंक की श्री महा जी को एवं संघ को हार्दिक बधाई देती हूँ। दिसंबर 1999 में मेरा विवाह अखाड़ा बाजार कुल्लू के एक संपन्न भक्त परिवार में हुआ। मेरी सासू माँ जी एवं मेरे पति देव को की संतों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। घर में संत समागम होता रहता था। इन्हीं दिनों कुल्लू में श्री महाराज जी ने महादेवी तीर्थ का प्रकट किया। एक दिन वे श्री महाराज जी हमारे घर पधारे तो मेरी सासू माँ जी ने उनका भव्य स्वागत किया जो मुझे आज तक याद है। श्री महाराज जी गीता बहन जी के दर्शनों के लिए उनके चरणों का चनमत लेने के लिए प्रतिदिन हमारे घर प्रातः काल 5 बजे 4 और 5 बजे के बीच में ही आ जाया करते थे। उसमें मैं नहीं समझ पाती थी कि ये क्या लीला है, क्या इतने बड़ा योगी और क्यों हमारे घर में बहन जी के पास आते हैं और चनामत पी कर दो क्षण भी निख रुकते हैं उसी समय चले जाते हैं, इसका क्या अर्थ है। मुझे उस वक्त नहीं पता चला कि एक दिन आएगा कि गीता माँ हमारे बहन जी गीता बही अपना घर बार त्याग करके मंदिर में चली जाएगी और महाराज जी का पूरा पूरा सहयोग देगी। अब उसमें भी आ गया कि देखते ही देखते 1974 में बहन जी गीता ने घर बार छोड़ा, नौकरी छोड़ी, घर बारे हम सब रोते बिलखते रहे, बार बार जाते बार बार समझाते लेकिन बहन जी को कोई अंत नहीं पड़ता और स्वामी जी भी महाराज जी भी हंस कर कहते अच्छा तुम्हारी बहन है तो ले जाओ, माता जी को कहते माता जी आपकी बेटी है तो ले जाओ, फिर वो भी हंस पड़ते और हम भी रोते रोते हंस पड़ते कि वाह स्वामी जी तो ऐसा कहते हैं और गीता बहन तो हमारी एक बात भी नहीं सुनती है। खैर ऐसे चलते चलते मुझे श्री महाराज जी के साथ यात्रा करने का भी सौभाग्य 2-3 बार प्राप्त हुआ। मेरे पति देव जी श्री महाराज जी को भगवान ही मानते थे और उन्होंने उन्हें भगवान मानकर उनके विषय में इंग्लिश में एक किताब लिखी है स्वामी सेवकदास एंड द लॉ ऑफ मिरेकल्स, और वो श्री महाराज जी को इतना मानते थे और कहते थे ये श्री राम कृष्ण परमहंस के अवतार हैं और ये शारदा माँ को ढूंढते यहाँ कुल्लू में आए हैं। और कई बार जब गीता बहन जी नहीं गए थे अभी मंदिर तो वो हंसी हंसी में कह देते थे एक दिन आएगा तो स्वामी जी हमारे को कहेंगे कि गीता बहन को हमें दे दो, ऐसे वो कभी कभी कहा करते थे तो हम सब हंस पड़ते थे कि ऐसा ही होता है कभी। तो इस तरह से मेरे पतिदेव श्री रामदास सूद जी को स्वामी जी से बहुत प्यार था और स्वामी जी उन्हें अर्जुन क्या कर बुलाते थे और अपना सखा मानते थे। यही ऐसी बातें जो स्वामी जी किसी से नहीं करते थे, गीते की बातें वो उनसे किया करते थे और चाहे वो अलौकिक बातें थी चाहे मुंडे संबंधी बातें होती थी क्योंकि वो रामलाल जी को अपना सखा मानते थे। एक बार हम अपने बच्चों के साथ मंदिर गए थे, मैं अपने तीनों बेटों को लेकर के जब मंदिर पहुंची अपने पतिदेव के साथ और स्वामी जी के पास बैठे, स्वामी जी ने बड़े प्यार से हमें चाय पिलाई, फिर कहा मेरे एक बेटे की ओर देख कर कहा ये विदेश जाएगा। तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा बेटा विदेश जाएगा, कौन जाएगा, कैसे जाएगा, विदेश जाना कोई आसान बात है। लेकिन उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई और वे आज न्यू जर्सी अमेरिका में एक ट्रेवल इंजीनियर काम करता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और मैं एक और एपिसोड आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो है कि सन 1995 दिसंबर 16 को श्री महाराज जी हमारे घर में उसी रूप में उसी भाव में जैसे पहले आया करते थे आए थे, सल्ला वगैरह बहन के साथ, और हमारी सासू माँ के सिर पे हाथ रखा था और उन्हें कहा था कि अब आप आगे भगवान की लीला देखोगी। और फिर तीसरे दिन में हमारे सासू माँ ने हंसते हंसते प्राण दे दिए थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। तो उसकी सफलाकांक्षी थी। मैंने सोचा कि हम सचमुच ही ठीक, हमारी सासू माँ का जीवन ही सफल हो गया। और पंडित राम तीर्थ राम जी ने पंडित श्री राम जी ने कहा कि माता जी बड़ी भाग्यशाली हैं, वो तो अब पुरुष बनेगी। इस सफला काशी ऊपर से श्री महाराज जी स्वयं आए तो पंडित श्री राम जी ने कहा कि माता जी अब पुरुष का रूप में संसार में आएगी, है ना। अभी मुक्त होने का समय तो नहीं है, लेकिन अब उनका जन्म बहुत अच्छे घर में और एक बालक के रूप में होगा। तुम ये तो ये सब सुनकर मैं बड़ी हैरान होती थी, ये क्या है, कैसे स्वामी जी ने भविष्य वाणी हमें के बारे में पंडित जी के द्वारा बताया। तो इन सब बातों से मेरे मन में एक श्रद्धा, एक पूर्ण विश्वास आज भी है। आज भी भले ही मेरे पतिदेव श्री रूप से इस संसार में नहीं है, लेकिन वो स्वामी जी के भक्त हैं और स्वामी जी के साथ हैं, और उन्होंने कहा था रामलाल यहाँ भी साथ हैं, आगे भी साथ ही रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं श्रृंखला सुन अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय माता दी, गीता माँ।